गुरु जरूरी है, गुरु नहीं। 30 अगस्त को जैन महावीर भवन आदर्श नगर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने फरमाया कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो संबंधी बेकार हैं, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। जीवन में गुरु जरूरी है, गुरु नहीं। किसी भी कार्य को हृदयंगम करने के लिए किसी से सीखा जाता है और वही सिखाने वाला गुरु होता है। गुरु के प्रति समर्पित शिष्य महान बन जाता है। 3 व्यक्तियों का दुनिया में उपकार चुकाना मुश्किल है, माता पिता, मालिक और तीसरा है गुरु। ग्रह नक्षत्रों में जिसका गुरु पक्ष मजबूत है, उसके सारे ग्रह नक्षत्र कमजोर भी हो तो भी उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु बलवान होना जरूरी है, लेकिन अहम प्रश्न यह है कि गुरु कैसा है। यही खोज सबसे अधिक जरूरी है। जिसमें लालच न हो, जिसमें संयम तप त्याग हो, और महावीर स्वामी के अनुसार जो निपुणार्थ बुद्धि वाला हो, वो ही गुरु हो सकता है। गाड़ी कितनी लग्जरी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ड्राइवर कितना होशियार है। अगर ड्राइवर शराबी है तो टिकट लेने के बाद भी आदमी उसमें नहीं बैठता है। गुरु शब्द का अर्थ करते हुए कहा, गु शब्द स्तवंतकार, रु शब्द स्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वाद, गुरु शब्द स्त्युच्छिते। गुरु का गो अंधकार का प्रतीक है, रू उसके विरोध का। जो शिष्य के अंधकार को दूर कर दे उसे गुरु कहते हैं। आजकल स्वार्थी, दम्भी, मायावी गुरुओं का साम्राज्य है, और शिष्य भी ऐसे ही मिल गए हैं। गुरु लोभी चेलो लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बापड़ा, बैठ पत्थर की नाव। दम सत्ता और विषयों के लोभी संसार में तैरते नहीं, स्वयं डूबते और दूसरों को भी डुबा देते हैं। अतः गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। एक गाय जंगल में घास चर रही थी, इधर उधर घूमकर मस्त हरी हरी घास खा रही थी। तभी गाय को एहसास हुआ कि कहीं से बाघ की आवाज आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बाघ दौड़ते हुए उसकी ओर ही आ रहा है। गाय डर गई और अपनी जान बचाने हेतु बहुत तेजी से भागने लगी। भागते हुए जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह भी ढूंढ रही थी और ऐसा करते हुए वह एक उथले तालाब में कूद गई। शिकार के इस माहौल में बाघ भी बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। दोनों को आश्चर्य हुआ कि तालाब में बहुत कम पानी था, लेकिन फिर भी उसकी गहराई में कीचड़ भरा हुआ था। एक दूसरे पर गिरने पड़ने के बाद गाय और बाघ ने देखा कि वे एक दूसरे के पास ही है, गले तक कीचड़ में फंस गए हैं। दोनों के सिर पानी के ऊपर थे, लेकिन बहुत छटपटाने के बाद भी वे तालाब से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाघ बार बार गाय पर गुर्रा रहा था। वह दहाड़ा, मैं तुम्हारी हड्डियों को अपने दांतों के बीच दबाकर चकनाचूर कर दूंगा। वह गुस्से में छटपटाया, जोर लगाकर गाय को अपना शिकार बनाना चाहा तो और अधिक दलदल में फंस गया और जल्द ही बेचैन हो गया, क्योंकि उसे अब बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बाघ को संघर्ष करते देख गाय ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ तिरस्कार करते हुए बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने कहा, होंगे, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पा रही। बाघ ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम्हारा क्या, तुम भी तो इस कीचड़ में मर जाओगी। गाय थोड़ा मुस्कुराए और बोली, नहीं, मैं नहीं मरूंगी। बाघ ने तुरंत जवाब दिया, जब मैं खुद को नहीं बचा सकता तो साधारण गाय खुद को कैसे बचाएगी? गाय ने शांति से जवाब दिया, मैं खुद को मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन मेरे मालिक कर सकते हैं। जब सूरज डूबेगा और उन्हें मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तो वे मुझे ढूंढने आएंगे। जब मैं उन्हें मिलूंगी, वे मुझे बचा लेंगे। बाघ चुप रह गया और उदास नजरों से गाय को देखने लगा। जल्द सूरज डूब गया और गाय का मालिक आ गया। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए, यानी गाय को दलदल से निकाल लिया। गाय बच गई। घर जाते हुए गाय और मालिक दोनों एक दूसरे के प्रति आभार महसूस कर रहे थे। साथ ही उन्हें बाघ पर यह सोचकर दया आ रही थी कि उन्हें बाघ को बचाने में खुशी होती अगर उसने ऐसा करने दिया होता। गाय और मालिक खुशी खुशी घर आ गए। गाय समर्पित दिल का प्रतीक है और बाघ घमंड वाले मन का। वही मालिक गुरु का प्रतीक है। कीचड़ इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और शिकार की दौड़ अस्तित्व के लिए संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्र होना और किसी पर निर्भर न होना अच्छा है, लेकिन इसकी अति भी ठीक नहीं है। आपको हमेशा एक मालिक की जरूरत होगी जो आप पर नजर बनाए रखे। आपका कोई मार्गदर्शक या गुरु होने का यह अर्थ नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप उनकी मदद से और भी मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान, होशियार व चतुर क्यों न हो, पर जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सशक्त गुरु होना आवश्यक है, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन कर जीवन को आगे ला सके, अशांत जीवन में शांति की लौ जगा सके। हर मुसीबत में हमारे साथ रहे। अतः जिंदगी में एक गुरु जरूर होना चाहिए। जो गुरु अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा हो, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की हो, साधना की गहराई में डुबकी लगाए हो, खुद तिरने के साथ दुनिया को तारने का सफल प्रयास किया हो, वही गुरु बनने योग्य होता है। गुरु का सानिध्य पाने वाला साधक भव भव के दुखों का निस्तार करता हुआ परम श्रेयस को पा लेता है। लग्जरी गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, ड्राइवर महत्वपूर्ण है। पतंग कितना कीमती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उड़ाने वाला कितना होशियार है। इसी तरह शिष्य महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु ही महत्वपूर्ण है, जो शिष्य की डूबती नाव तेरा देता है। गुरु की खोज जरूरी है। गुरु सही तो सब सही। गुरु की खोज करो प्यारे। गुरु किस प्रकार शिष्यों को तार देते हैं उसका एक प्रसंग है। बात बहुत प्राचीन समय की है। एक गांव के बाहर एक महात्मा रहते थे। गांव वालों का उन पर बहुत विश्वास था। वे संकट के समय में महात्मा जी से ही सलाह लिया करते थे। एक बार गांव में बीमारी फैली जिससे गांव के सारे मुर्गे मुर्गी और चूजे मर गए। गांव वाले चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब उन्हें अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो वे हमेशा की तरह महात्मा जी के पास पहुंचे और बोले, महात्मा जी, बड़ी ही चिंता का विषय है। हमारे गांव में अचानक ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे मुर्गे मुर्गी व चूजे मर गए हैं, जिससे गांव में मुर्गों की नस्ल ही समाप्त हो गई है। अब समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुबह मुर्गे बांग जो नहीं देते हैं, मुर्गों के बिना कैसे काम चलेगा। महात्मा शांत भाव से बोले, भाइयों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, परमात्मा सब भला ही करेंगे। गांव वाले चले गए। कुछ दिन बीते कि गांव में फिर से बीमारी फैली। इस बार गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले चिंतित होकर फिर से महात्मा के पास पहुंचे और दहकी स्वर में महात्मा से कहा, महात्मा जी, इस बार गांव के सारे कुत्ते मर गए, कुत्तों के बिना गांव की रखवाली कौन करेगा। इस बार भी महात्मा ने वही जवाब दोहराते हुए कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, परमात्मा सब भला ही करेंगे। जाओ अपने कार्य में व्यस्त रहो। लोगों को महात्मा का जवाब ठीक नहीं लगा, लेकिन उन पर श्रद्धा होने से कोई कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप वापस चले गए। एक दिन अचानक गांव में भयंकर आंधी तूफान के साथ ऐसी जोरदार बारिश हुई कि जिससे गांव के सभी घरों की आग बुझ गई। उस समय में आग जलाने के लिए माचिस आदि साधन थे नहीं। लोग चूल्हों में ही आग दबाकर रखते थे। पानी गिरने से चूल्हों में दबाकर रखी गई आग भी बुझ गई। सारे गांव में किसी के भी पास आग नहीं बची। गांववासी लगातार आ रही आपत्तियों से परेशान हो गए। वे सब मिलकर महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महात्मा जी, इस बार तो गजब ही हो गया, गांव में आग ही समाप्त हो गई, कैसे क्या करें। मुर्गे और कुत्तों के मरने से तो फिर भी काम चल गया, लेकिन जब आग ही समाप्त हो गई तो भोजन कैसे बनेगा। भोजन नहीं बनने पर हम सब भूखों ही मर जाएंगे। महात्मा ने सारी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गांव की इसी में भलाई होगी, परमात्मा यही चाहता होगा, इसे भी तुम प्रभु की कृपा समझो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचो और कल कोशिश करके और कहीं से आग ले आना। आज तो परमात्मा के ध्यान में समय बिताओ। महात्मा का हमेशा की तरह ही जवाब सुनकर इस बार गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया। वे महात्मा से नाराज हो गए और आपस में कहने लगे, हम तो इन्हें भगवान की तरह मानकर अपनी हर समस्या का समाधान इनसे मांगने आते हैं, और ये है कि कहते हैं जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। इनका क्या है, इनकी तरफ से भले ही हम भूखे मरे। इस तरह बड़बड़ाते हुए एवं महात्मा को कोसते हुए वापस घर लौट आए। चून की रात हो चुकी थी, अतः कोई उपाय नहीं था। गांव वाले जो कुछ था खाकर बैठे थे। इधर दूसरे देश के राजा ने उस गांव के राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजसेना सहित कत्लेआम करता हुआ उस गांव के बाहर से गुजर रहा था। तब वह दूर से ही देखकर सैनिकों से बोला, सैनिकों, उधर सामने मकान अवश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उधर जाना बेकार है। न तो उस गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, न मुर्गों के बांग देने की। अभी भोजन का समय है, फिर भी देखो किसी भी घर से धुआं उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है यह गांव आबादी से शून्य है। सैनिकों ने कहा, आपका सोचना एकदम सही है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। तब राजा बोला, तो फिर समय बर्बाद किए बगैर आगे बढ़ चलो। उस गांव में हमें नहीं जाना है, क्योंकि वहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला। राजा का आदेश प्राप्त करते ही सेना उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ गई। गांव के कुछ व्यक्ति जो बाहर से लौट रहे थे, सेना को आते देख पेड़ पर छुप गए थे। उन्होंने राजा की सारी बात सुन ली। राजा सहित सेना के जाने पर वे अपने गांव लौटे और पूरी बात गांव वालों को बतलाई, तो गांव वाले प्रसन्न होकर कहने लगे, आज तो हम प्रभु की कृपा से जीवित बच गए, वरना तो सब मारे जाते। महात्मा जी ने सच ही कहा था। सुबह होने पर सभी महात्मा के पास गए एवं क्षमा मांगते हुए बोले, आपने सच ही कहा था, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता। जहां गुरु नहीं वहां जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के जीवन बर्बाद हो जाता है। पहले तो लड़के लड़कियां ही भागती थी, अब तो बहुएं और बच्चों की माताएं भी भागने लगी हैं। दूसरी बात, नौकर राजा और लता, इनके समीप कोई भी व्यक्ति वस्तु अधिक रहेंगे वे उसी के साथ जुड़ती चली जाती हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। आज अकेली महिला अकेले नौकर से काम कराते हुए रहती है और किसी न किसी दिन गड़बड़ हो जाती है। एक नवयुवक की पत्नी भी नौकर के साथ लग गई, बच्चों ने देख लिया, कोर्ट केस हुआ, बच्चों ने माँ के विपक्ष में गवाह दी, आखिर तलाक हो गया। कई स्थलों पर तो बच्चों की माताएं भी दूसरे मर्दों के साथ भाग रही है। इन सबको देखते हुए योग्य गुरु की शरण में जाना जरूरी है, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। अतः गुरु कीजिए जान के, गुरु वंश परंपरा से नहीं चलते, गुरु तो आपकी खोज पर निर्भर है। गुरु ही आपको सन्मार्ग दिखाते हैं कि पानी बचाओ, व्यर्थ का पानी का नुकसान न करें। एक बूंद पानी में असंख्य जीव हैं। 100 वर्ष पहले एक जैन संत ने कहा कि पानी का नुकसान देखते हुए वो समय आएगा जब पानी भी बोतलों में बिकेगा। वो अब हो रहा है। सभी ने पानी के व्यर्थ के बर्बादी को छोने का संकल्प लिया। जितने घर में लोग हैं उतने वृक्षों की रक्षा तो होनी ही चाहिए। व्यर्थ की निंदा करके हमारा मूड और मुंह खराब न करें। भगवती सूत्र में वर्णन आया, मृग मारने वाले व्यक्ति को 5 क्रिया लगती है। इसी तरह तीर के नोक जो पहले आत्मा थी उसको भी 5 क्रिया लगती है, क्योंकि उसके माध्यम से वो व्यक्ति मारा गया। मुंबई में आपका फ्लैट है, उसमें कोई 2 मर्डर कर दे तो पुलिस आपको पकड़ने यहाँ आ जाएगी, क्योंकि फ्लैट के मालिक आप हो। किसी से पार्टनरशिप हटानी है तो वकील के कहे अनुसार कागजों पर साइन करने पर काम हो जाता है। इस तरह हमें भवों भवों के पापों को काटना है तो पूर्व भव की क्रियाओं के संबंध को गुरु के पास बैठकर त्याग देना चाहिए। इसी तरह भविष्य का संथारा भी अभी किया जा सकता है, जिससे अगले भव में इस भव की क्रिया न ले जाना पड़े। संथारा अभी करोगे लागू जीवन के अंतिम समय में हो जाएगा। यह सब बातें गुरु ही समझा सकता है, जो आपके भारी पापों को हल्के तरीके से धोने का तरीका सिखाते हैं। एवं तामुनि को समर्थ गुरु मिलने से उनका कल्याण हो गया। इसी के साथ आचार्य प्रवर ने गीत गाया, एवंता मुनिव नाव तिराय बहता नीर में। पूरे हाल में एवंता मुनि की नाव गूंज उठी। आचार्य श्री ने कहा, भगवान को यह पता था कि एवंता पानी में नाव तिराएगा, फिर रोका नहीं और स्थविरों के पूछने पर एक ढंग से उनको उपालम्ब दिया गया और कहा गया कि एवंता उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, उनकी सेवा करो। सारे शिष्य तुरंत मान गए। इसी प्रकार हमें भी गुरु के प्रति समर्पित रहना होगा। गुरु के समाधान में तर्क करने वाले के पास श्रद्धा की आंख नहीं है। श्रद्धा सही तो सब सही। एवंता मुनि ने गौतम की उंगली पकड़ ली थी, तब भी वे महान संत कुछ नहीं बोले, बल्कि एवंता का बालमन आहत न हो इसके लिए वे एवंता के भवन पर पधार गए। एवंता की माँ श्रीदेवी ने उत्साह के साथ आहार बहराया। एक ही उपदेश में एवंता तिर गया। आप भी जागे और आगे बढ़ो। धर्म प्रभावना। आचार्य भगवान केवल प्रवचन ही नहीं फरमाते बल्कि उसके साथ जीवन निर्माण की अनूठा काम करते हैं। सामायिक पर प्रवचन दिया तो सभी सामायिक करने लगे। 5-5 सामायिक का महत्व बतलाया तो सैकड़ों भाई बहन प्रतिदिन 5-5 सामायिक करने लगे। रात्रि भोजन त्याग के लिए समझाया। यही नहीं, एक वर्ष के लिए निरंतर त्याग करने की बात कही तो 50 भाई बहन ने खड़े होकर रात्रि भोजन का 1 वर्ष के लिए त्याग कर दिया। सैकड़ों भाई बहनों ने 1 महीने में 15 दिन का, तो सैकड़ों भाई बहनों ने 1 महीने में 8 दिन का और अवशेष ने 1 महीने में 4 दिन का त्याग किया। पानी की हिंसा से बचो तो लोगों ने फव्वारे टब में नहाने का त्याग कर दिया। जो भी समझा रहे हैं वो हो रहा है। जलंधर का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया इतिहास रच रहा है। तप त्याग का नियम भारी मात्रा में हो रहे हैं। प्रवचन पश्चात प्रभावना के लाभार्थी गुप्त गुरु भक्त की तरफ से रहा। 5-5 सामायिक के प्रभावना का लाभ श्री सुरेश जी जैन मंडी रोड की तरफ से रहा। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।